یا تو دیوانہ ہنسے یا تو جسے توفیق دے، ورنہ اس دنیا میں آ کر مسکرا سکتا ہے کون؟ لیکن دوستو، ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ بنا ہنسے نہیں رہ سکتے۔ یدی آپ کے ساتھ ہیں آپ کے چہیتے جانے مانے میمکری کلاکار او پی دیویدی۔ جن کی پہلی پیشکش تھی میمکری بائی او پی دیویدی، دوسری پیشکش تھی ہنسی ٹھہاکے، اور اب ایک نئی پیشکش۔ آپ بیتاب ہوں گے سننے کے لیے او پی دیویدی کے مزیدار چٹ پٹے میمکری آئٹمز اور ہنسی سے لوٹ پوٹ کرنے والے لطیفوں کو۔ تو آپ سے مخاطب ہے اپنے مزاحیہ لطیفوں، مسکراہٹوں اور قہقہوں کو بکھیرنے کے لیے ٹی سیریز سپر کیسٹ انڈسٹریز کے سپر اسٹار میمکری اسٹار او پی دیویدی۔
تب ہوا یوں کہ ایک بار اخبار میں ایک اشتہار آیا، فلم انڈسٹری میں میوزک ڈائریکٹر کی ضرورت تھی۔ تو اس میں ریکوائرمنٹس جو مانگی تھی اس میں تھا کہ چار پانچ قسم کے انسٹرومنٹس بجانے آتے ہوں اور تین چار قسم کا گانا گانا آتا ہو۔ تو ایک آرتی گانے والے پنڈت جی، پونگا پنڈت عرف کھنڈت جی، نے اس میں اپلائی کر دیا۔ جب وہ انٹرویو میں پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کون کون سے انسٹرومنٹس بجاتے ہیں؟ تو بولے
گھنٹہ، گھڑیال، شنکھ، جھان، مجیرے، مردنگ، ڈھولک سب بجا لیتے ہیں۔
بولے بھائی یہ انسٹرومنٹس نہیں ہیں، انسٹرومنٹس تو وہ ہوتے ہیں گٹار، ستار، مینڈولین وغیرہ۔
بولے یہ بھی انسٹرومنٹس ہیں۔
کوئی پرانا انوبھو؟
20 سال سے آرتی گا رہے ہیں ستیہ نارائن کی۔
بولے گانے کس طرح کے گا لیتے ہیں؟
گنیش جی کی آرتی، درگا جی کی آرتی، شنکر جی کی آرتی، سنتوشی ماتا کی آرتی سب گا لیتے ہیں۔
بولے بھائی یہ نہیں چلتا، یہاں پر فلمی گانے گانے پڑتے ہیں، کیا آپ فلمی گانا گا سکتے ہیں؟
جی ہاں، فلمی گانا بھی گا سکتے ہیں۔
بولے ٹھیک ہے، کسی پرانی فلم کا گانا سنائیے۔ تو صاحب ان پنڈت جی نے پرانی فلم کا گانا سنا، فلم ناگن کا، تنڈولے میرا منڈولے میرے دل کا گیا قرار۔ تو صاحب انہوں نے اس گانے کا کیا ستیہ ناش کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پونگا پنڈت عرف کھنڈت نے یہ گانا کس طرح گایا؟
تیرا تن ڈولے سامی میرا من ڈولے، تیرا تن بھی ڈولے میرا من بھی ڈولے، اب کون بجائے بھائی۔
ایک بار میں ایک دیہات میں گیا ہوا تھا پکنک پر اپنے دوست کے ساتھ۔ جیپ میں چلا رہا تھا، پیچھے ٹرک کھڑا ہوا تھا، ہم لوگ راستہ بھٹک گئے تھے، غلط راستے پہ چلے گئے تھے، گاڑی ریورس کرنی تھی، پیچھے ٹرک کھڑا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ ٹکرا نہ جائے، سائیڈ میں نالا تھا، میں نے ایک دیہاتی کو پاس بلایا، ادھر آؤ۔
جی مالک۔
میں نے کہا مالک والا کچھ نہیں، وہ ہم جیپ ریورس کر رہے ہیں، پیچھے ٹرک کھڑا ہے، ٹکرائے تو بتانا۔
بولے جی آپ کرو، ہم ٹکرائیے بتائیں گے۔ بالکل۔
میں نے ریورس گیئر ڈالا، ایکسیلیٹر پہ پیر رکھا، ایکسیلیٹر بڑھانا شروع کیا اور گاڑی ریورس کرنا شروع کیا۔ اسے بھی بڑا مزہ آ رہا تھا، آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو، دائیں کاٹو بائیں کاٹو، آنے دو آنے دو۔ اتنے میں بھاڑ سے آواز آئی، بولا باش، ٹکرا گئی ٹکرا گئی۔ ایک مارکیٹ کے بہت بڑے دلال، نام تھا سیٹھ بھکاری مل، لیکن کروڑوں کے آسامی تھے، 10-5 ٹیلی فون ہمیشہ ان کے آس پاس لگے رہتے اور پورے مارکیٹ کے منٹ منٹ کے بھاؤ کی جانکاری ان کے پاس آتی رہتی۔ جیسے ہی خبر ملتی کہ کسی چیز کا بھاؤ بڑھ گیا ہے تو فوراً بولتے،
اے بابا گودام میں دبا کے رکھو،
اور اگر خبر ملتی کہ بھاؤ گر گیا ہے تو فوراً بولتے،
ارے بابا بیچ ڈالو، مارکیٹ میں نکال دو۔ کیا بولا؟ میرا تیز ہو گئی، ارے بابا گودام میں دبا کے رکھو۔ کیا بولا؟ چاول گر گیا، ارے بابا بیچ ڈالو، مارکیٹ میں نکال دو۔ کیا بولا؟ ہلدی گر گئی، ارے بابا بیچ ڈالو، مارکیٹ میں نکال دو۔
ایک بار سیٹ جی کے گھر سے ٹیلی فون آیا، سیٹ جی آپ کی بیوی پلنگ پیسے گر گئی ہیں۔ بولے
ارے بابا بیوی گر گئی تو بیچ ڈالو، مارکیٹ میں نکال دو۔
سب آج کل ماروتی کار کا بڑا کریز ہے، میرے ایک دوست ہیں ان کو دہیز میں ماروتی کار ملی ہوئی ہے۔ تو صاحب اس کی ہیڈ لائٹس جلتی نہیں تھی، پتہ نہیں کیا ڈیفیکٹ تھا۔ انہوں نے بھی سوچا دان کی بچیا کے دانت نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ دوسرے دن صبح یہ کار نکالی انہوں نے گھومنے کے لیے 5:30-6 بجے، تو دیکھا سڑک پہ ایک دم گھنا کوہرا چھایا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھ رہا تھا۔ सामने एक गाड़ी दिखी इनको जाती हुई, ये उसके पीछे लग गए, उसका जो बैक लाइट थी उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे, उन्होंने सोचा इस तरह से आगे तक पहुंच जाएंगे। तो साहब वो गाड़ी जब तेज चलती तो ये भी तेज हो जाते, वो धीरे होती तो ये भी धीरे हो जाते, वो दाएं मुड़ती तो ये भी दाएं मुड़ जाते, वो बाएं मुड़ती तो ये भी बाएं मुड़ जाते। अचानक सामने वाली गाड़ी वाले ने जोर से ब्रेक मारा, इनकी गाड़ी उस गाड़ी से टकरा गई, सारा बम्पर अम्पर सब टूट गया। बड़ी गुस्सा आई, खिड़की में से गर्दन निकाल के बोले, क्यों बे, क्या पहली बार गाड़ी चला रहा, देखता नहीं है, ना कोई इंडिकेटर दिया ना कोई ब्रेक लाइट, एकदम से ब्रेक मार दिया। वो गाड़ी का ड्राइवर धीरे से उतरा, इनके पास आया, इनको कॉलर पकड़ के गाड़ी से बाहर निकाला और बोला, क्यों बे,
क्या आपने घर के गैरेज में ही मैं तुझे इंडिकेटर दूंगा और ब्रेक लाइट दूंगा।
एक हाथी और चूहे में बड़ी दोस्ती थी। दोनों डैम साइड पे पिकनिक मनाने गए। हाथी पानी के अंदर नहा रहा था, चूहा बाहर डिस्को डांस कर रहा था, टू इन वन टैप रिकॉर्डर पर डिस्को म्यूजिक की कैसेट लगा के। अचानक चूहे के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने हाथी को बाहर आने के लिए कहा। हाथी ने सोचा पता नहीं क्या बात है, हाथी पानी में से बड़ी मुश्किल से लदा फदा पानी के बाहर आया। जैसे ही बाहर आया तो चूहे ने कहा, जा जा। हाथी को बड़ा गुस्सा आया कि वो जैसे ही पानी के बाहर निकला उसके बाद एकदम से उसने कह दिया कि जाओ जाओ। तो हाथी ने कहा, भाई कौन सी बात है, तुमने मुझे पानी के बाहर क्यों बुलाया? तो चूहा बोला,
अरे कुछ नहीं यार, मैं तो ये देख रहा था कहीं तुम मेरी अंडरवियर पहन के तो नहीं आ रहे।
टीवी पर एक कार्यक्रम आता है आप और हम, जिसमें दर्शकों के पत्रों के जवाब दिए जाते हैं, और पत्रों के जवाब देते वक्त दर्शकों को बिल्कुल ना समझ समझा जाता है। कई बार तो ये टीवी वालों को मालूम भी नहीं होता है कि टीवी कब चालू हो गया, और हम इनकी आपस की बातें भी सुन लेते हैं। तो इस आप और हम कार्यक्रम की एक झलक पेश कर रहा हूं। दो लोग हैं, वर्मा जी और शर्मा जी, एक दर्शकों के पत्र पढ़ रहे हैं, दूसरे जवाब दे रहे हैं।
शर्मा जी।
जी वर्मा जी।
भैया आप और हम कार्यक्रम के लिए समय बहुत कम रहता है, हमारे पास इतने पत्र आ जाते हैं कि हम संभव नहीं रहता कि हम हर पत्र का जवाब दे पाएं। भैया आज कितने पत्र आए हैं बाहर से?
सब वैसे तो 1500 पत्र आए थे, लेकिन वो सब हमने कचरे की डलिया में फेंकवा दिए हैं क्योंकि संभव नहीं है। आप
ये आपने बहुत अच्छा किया, देखिए इतने पत्र तो हम पढ़ भी नहीं सकते हैं।
वैसे आज सब 5 पत्र पढ़ना है
जी,
और इन 5 पत्रों में से 3 आपके पड़ोसियों के हैं, 2 हमारे रिश्तेदारों के।
अरे भाई ये तो जरूरी है, आप सोचिए अगर हम ये पत्र भी नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो पत्र ही नहीं पढ़ते हैं। खैर तो आज का आप और हम कार्यक्रम शुरू किया जाता है, और शर्मा जी।
जी।
मैं समझता हूँ कि आज के आप और हम कार्यक्रम में आप और हम ही हैं।
तो शर्मा जी बोले, जी हाँ वैसे तो आप और हम ही हैं, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो ये दर्शक भी हैं।
बोले भाई दर्शकों का क्या है, वो तो दर्शक हैं।
बोले जी हाँ वो तो दर्शक हैं, उनका क्या है, वो तो दर्शक हैं।
भाई तो पत्र पढ़िए।
जी ये पहला पत्र आया है होशंगाबाद से, घासी दास जी लिखते हैं।
क्या लिखते हैं भाई?
लिखते हैं हमें टेलीविजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
भाई तो हमें कौन सा इंटरेस्ट है?
ये लिखते हैं कि हम दूरदर्शन के कार्यक्रमों से बचने की कोशिश करते हैं।
भाई तो सभी लोग बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच कहां पाते, हम तो इसी डिपार्टमेंट के हो कि नहीं बच पाते हैं। भाई चलिए आगे पढ़िए।
आगे इन्होंने लिखा है कि टीवी पर बड़े बोर कार्यक्रम आते हैं।
भाई देखिए ये हमको इरिटेट करते हैं। भाई जो सारी दुनिया को जो बात मालूम है कि दूरदर्शन पे बोर कार्यक्रम आते हैं, उसको बार बार लिखने की जरूरत क्या है? अगर ये ऐसे ही मैटर्स रिपीट करेंगे तो हम कहां तक इनके पत्रों के जवाब देंगे। भाई आगे क्या लिखा है इन्होंने, पढ़िए।
जी इन्होंने आगे लिखा है कि कृपया ये बताएं कि ये बोर कार्यक्रम आए तो हम क्या करें।
कहां से आए हैं ये पत्र?
जी होशंगाबाद से।
किसने लिखा है?
घासीदास जी ने।
भाई नाम तो इनका घासीदास जी है, लेकिन बड़े अकलमंद मालूम होते हैं, कहते हैं टीवी पे बोर कार्यक्रम आते हैं। भाई देखिए घासीदास जी ऐसा है कि जब बोर कार्यक्रम आए तो आप क्या करें, है यही लिखा है ना इन्होंने?
जी हाँ इन्होंने यही लिखा है।
भाई घासीदास जी जैसे देखिए ऐसा है, टीवी एक ऐसा इक्विपमेंट है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसमें कई तरह के एडजस्टिंग नॉब्स होते हैं, कलर कंट्रास्ट का, ब्राइटनेस का, और इन्हीं सब बटनों के बगल में एक विशेष किस्म की बटन होती है जिस पर लिखा रहता है ऑन और ऑफ। अब अगर आप महसूस करते हैं कि कार्यक्रम बोर है, आप कार्यक्रम से चट रहे हैं, तो आप वो बटन दबा दीजिए जिस पर लिखा है ऑन और ऑफ।
तो दूसरे वाले कहते हैं, देखिए कितनी अच्छी जानकारी हम दर्शकों को मिल गई कि अगर हम महसूस करते हैं कि कार्यक्रम बोर है तो हम वो बटन दबा दें जिस पर ऑन और ऑफ लिखा हुआ है।
अगला पत्र पढ़िए
जी। अगला पत्र आया है, ये हिंदी के प्रोफेसर है, हरिओम उपाध्याय।
बहुत अच्छी बात है, हिंदी के प्रोफेसर विद्वान का पत्र हमारे पास आया है।
ये लिखते हैं कि आपका दूरदर्शन पर जो चरित्रहार कार्यक्रम आता है।
अच्छा, चरित्रहार?
जी हाँ, ये लिखते हैं कि आपका जो चरित्रहार कार्यक्रम आता है इसे आप बिल्कुल दिखाना बंद कर दीजिए।
अच्छा, बंद कर दे? भाई किस खुशी में बंद कर दे, एक ही तो कार्यक्रम हमारा ऐसा आता है जिस समय पब्लिक टीवी ऑन करती है, अगर हम उसे भी बंद कर देंगे तो लोग ये 10,000 का डिब्बा खरीद के लाएंगे क्यों? आगे पढ़िए।
इन्होंने लिखा है कि इस चरित्रहार कार्यक्रम को देखने से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों एक ही क्लास में 3 साल से फेल हो रहे हैं। इस चरित्रहार कार्यक्रम को देखने से बच्चों के चरित्र का ह्रास होता है, उनके चरित्र का निर्माण नहीं होता है और बच्चे पढ़ते लिखते नहीं।
भाई सबसे पहली बात तो ये है कि टीवी जो है वो मनोरंजन का साधन है, इनको मैं बात बता दूं ये जो भी हैं। और दूसरी बात ये कि अगर ये लोग सोचते हैं कि वो बच्चे पैदा कर करके छोड़ दें और हम टीवी वाले उनके चरित्र का निर्माण करें और उनके बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, तो भाई ये तो बहुत गलत बात है कि नहीं?
जी हाँ साहब, ये तो बिल्कुल गलत है, कोई कोचिंग क्लास तो हम लोग चला नहीं रहे हैं, ये तो बिल्कुल।
जी हाँ, और भाई ऐसा है कि अब तो ये तो गलत है, और ये ऐसे पत्र तो आप शामिल मत किया करिए, फाड़ के फेंकिए इसको। अब कि आप ऐसे पत्र शामिल करेंगे तो हम आपकी तनख्वाह काटेंगे।
वर्मा जी, मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने गलती से चित्रहार की जगह चरित्रहार शब्द इस्तेमाल कर दिया।
आप भूल रहे हैं, वो हिंदी के प्रोफेसर हैं, शब्द उन्होंने सही इस्तेमाल किया है, ये चरित्रहार ही है, लेकिन हम अपने दूरदर्शन की भाषा में इसको चित्रहार कहते हैं। आप अगला पत्र पढ़िए।
जी, अगला पत्र आया है हरियाणा के गुड़गांव से।
अच्छा,
पहलवान गिरधारी लाल लिखते हैं।
क्या लिखते हैं?
ये लिखते हैं कि हमने आपका जान है जहान वाला घरेलू नुस्खे का कार्यक्रम देखा।
बहुत अच्छी बात है भाई, आपने भी लाभ उठाया, जानकर खुशी हुई।
तो ये लिखते हैं कि जिसमें डॉक्टर उपाध्याय ने यह बताया था कि यदि आप बालों में आंवले का लेप लगाएं तो बाल आपके घने होंगे, हमने ये लेप लगाया है।
देखिए, इन्होंने ये लेप लगाया है तो निश्चित रूप से इन्हें फायदा हुआ होगा, है ना? चलिए आगे पढ़िए।
जी आगे, आगे साहब मैं नहीं पढ़ सकता, आप पढ़िए।
भाई पत्र पढ़ने की ड्यूटी आपकी है, मेरी जवाब देने की है, अब आप अपना भी काम नहीं कर पाएंगे तो कैसे? पढ़िए भाई, क्या बात है?
सर इसमें आगे दूरदर्शन वालों को बुरी बुरी गालियां लिखी हुई हैं।
भाई कौन सी नई बात है, हर पत्र में दूरदर्शन वालों को गालियां आती हैं, लेकिन तरीका ये होता है कि हम गालियां छोड़ के आगे पढ़ देते हैं। चलिए खैर, गालियां छोड़ के पढ़िए, आप नए आए हैं, आपको नहीं मालूम है, आगे पढ़िए।
आगे इन्होंने लिखा है कि हमने वो लेप लगाया है, बाल घने होना तो दूर, हमारे सर के सारे बाल उड़ गए, साइडों में बाल बचे हैं, बीच में हम गंजे हो गए हैं। आप समझ गए होंगे कि हम कितने दुखी हैं, जब भी हम आपको टीवी में देखते हैं ऐसी इच्छा होती है कि उतार के जूते 25 आपके सर पे मारें ताकि आप भी हमारी तरह गंजे हो जाएं। आप समझ गए होंगे हम कितने दुखी हैं, कृपया बताएं हम क्या करें।
भाई बड़े आपने इंटरेस्ट ले लेके इस पत्र को पढ़ा और बड़ा मुझे भी ये पत्र बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। भाई देखिए ऐसा है गिरधारी लाल पहलवान जी, हम जो भी प्रक्रिया अपनी टीवी में दिखाते हैं आप लोग उसे गौर से नहीं देखते हैं।
जी हाँ, गौर से देखना चाहिए।
भाई जहां तक मुझे ख्याल है शर्मा जी,
जी
वो जब हमारे डॉक्टर उपाध्याय ने ये कार्यक्रम में बताया था तो उन्होंने ये बताया था कि ये लेप जो है ये दाएं हाथ से लगाया जाता है और इन पहलवान जी ने बाएं हाथ से लगा लिया है तो भाई बाल तो झड़ेंगे।
जी हाँ, मुझे भी याद है कि ये इन्होंने दाएं हाथ से बताया था और देखिए अब इनने गलती कर दी।
तो भाई ऐसी आप गलती करेंगे तो नुकसान हो गई। अब ऐसा है चूंकि आप क्या करें, है ना, यही इन्होंने लिखा है।
जी
तो भाई ऐसा है चूंकि आपके केवल साइडों में बाल बचे हैं, बीच में आप गंजी हो गए, तो आप ऐसा करें साइडों में कंघी करें, बीच में कपड़ा मारें और ऑफिस जाते टाइम वही कपड़ा स्कूटर पे मारें तो आपकी खूबसूरती में और गाड़ी की खूबसूरती में एक चांद लग जाएगा, क्यों भाई? या फिर ऐसा करें कि आप किसी हज्जाम को बुला के चारा ठाने दे के पूरा मैदान साफ करा लें, है ना, तो आपका जो है सिमेट्री बनी रहेगी और शेप जो है वो बिगड़ेगा नहीं। एक काम आप अलबत्ता कर सकते हैं कि जो भी आपके चारा ठाने हज्जाम को बुलाने में खर्च हो वो आप दूरदर्शन पे क्लेम कर दीजिए। अगला पत्र पढ़िए
जी। अगला पत्र आया है दिल्ली के दरियागंज से। इंदरजीत जी लिखते हैं।
क्या लिखते हैं?
लिखते हैं कि आपका टीवी पर एक जो कार्यक्रम आता है वो हमें बहुत पसंद आता है।
बहुत पसंद आता है
जी।
भाई ध्यान से पढ़िए, कहीं गलती से आप नहीं तो नहीं छोड़ रहे हैं, पसंद नहीं आता तो नहीं लिखा, जरा ठीक से पढ़ा करिए, गलती मत किया करिए।
जी नहीं, इन्होंने लिखा है कि आपका दूरदर्शन पर एक जो कार्यक्रम आता है वो हमें बहुत पसंद आता है और आप इस कार्यक्रम को हमें हमेशा दिखाया करिए। यदि आप इस कार्यक्रम को हमें हमेशा दिखाएंगे तो हम टीवी कभी ऑफ नहीं करेंगे।
भाई शर्मा जी देखिए, मैं 20 साल से इस सर्विस में हूँ लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है कि जिसमें लिखा हो कि आपके दूरदर्शन पे बहुत अच्छे कार्यक्रम आते हैं। भाई मेरी बीवी भी अक्सर मुझसे जिक्र करती है कि आपने आज तक टीवी पे ऐसा कोई पत्र नहीं पढ़ा है कि जिसमें लिखा हो कि आपको दूरदर्शन पे अच्छे कार्यक्रम आते। मुझे भाई बड़ी खुशी हो रही है पत्र पढ़ के, और आज मैं मंदिर में जाके 5.25 रुपए का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाऊंगा। और भाई देखिए ये कार्यक्रम का नाम बताइए, इन्होंने कौन सा कार्यक्रम इनको पसंद आता है?
तो शर्मा जी बोले जी उस कार्यक्रम का नाम है रुकावट के लिए खेद है, सॉरी फॉर इंटरप्शन।
दोस्तों आज के जमाने में क्रिकेट हमारी आम जिंदगी में इस तरह घुसता जा रहा है कि हो सकता है कुछ दिनों बाद मियां बीबी के बीच होने वाली घरेलू लड़ाई भी क्रिकेट की भाषा में हो। जरा सोचिए ये लड़ाई कितनी मजेदार होगी।
ओफ ओफ क्या बात है भाई, आजकल तो क्रिकेट की गुगली गेंद की तरह खूब बल खा रही हो, पता नहीं ये बिजली किस तरफ गिरेगी।
अरे कितनी बार समझाया कि ऐसी गलत बैटिंग करोगे तो हमेशा आउट होगे।
चुप रह, बदतमीज कहीं की।
तू हमेशा लिमिट के बाहर जाती है, हमेशा क्रीज के बाहर खेलती है, देखना किसी दिन LBW होगी तब पता लगेगा।
अरे तेरे बाप से मैंने इस बात के लिए कितनी बार अपील की मगर तेरा बाप भी नंबर एक का बदमाश है, हमेशा पाकिस्तानी अंपायर की तरह गलत डिसीजन दिया।
अरे वैसे भी कुछ ओवर बाद खेल में गेंद बदल दी जाती है मगर मेरी कमबख्त किस्मत ऐसी खराब है कि ये पुरानी गेंद अभी तक मेरे पल्ले पड़ी है।
अरे तुम तो पहले से ही पैदाइशी स्पिनर हो, तुम्हें तो पुरानी गेंद ही मिलती थी, मगर शुक्र करो कि तुम्हें गेंद मिल गई क्योंकि तुम्हें तो बॉलिंग करनी ही नहीं आती।
अरे कमबख्त, पिच खराब होती है तो अच्छे अच्छे बॉलर मात खा जाते हैं, स्पिन फेंको तो बाउंसर होती है और बाउंसर फेंको तो स्पिन होती है।
अरे मगर तुमने तो जितने भी ओवर फेंके वो सब मेड इन गए, एक भी रन नहीं बना।
अरे तेरे फेंकने पैसे मुझे एक बात याद आ गई कि कल तूने गुस्से में आके घर का सामान चौकी बेलन बर्तन भाड़े फेंकना शुरू किया और मैं घर की बाउंड्री पे खड़े खड़े सारा सामान कैच करता रहा मगर तेरा थ्रो जारी रहा। मैं फील्डिंग करते करते थक गया मगर तूने अपना थ्रो बंद नहीं किया।
अरे तो कौन सी नई बात है, फील्डिंग करना तो तुम्हारी पुरानी आदत है, वो दिन भूल गए जब शादी से पहले तुम मेरे लिए कितनी टाइट फील्डिंग करते थे, कभी न्यू मार्केट में कभी बस स्टॉप पर।
अरे बेवकूफ, मैं तेरे लिए टाइट फील्डिंग जरूर करता था मगर मेरा इरादा तुझसे शादी करने का नहीं था, मैं तो तुझे ड्रॉप करके किसी और से शादी करने के चक्कर में था।
शादी से पहले तू कितनी बातें बनाता था, कहता था डार्लिंग मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, खूब चौके छक्के मारूंगा और तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी, और अब शादी के बाद लेग और बाई रन के अलावा कुछ भी नहीं। अरे कहाँ गई वो तेरी ओपनिंग बैटिंग?
अरे कमबख्त हूँ तो मैं ओपनर बैट्समैन ही, मगर मुझे दुख है कि तू मुझे 12वां खिलाड़ी समझती है।
अरे तुम तो हो ही 12वें खिलाड़ी, तुम्हें गलत फहमी है कि तुम ओपनर हो।
अरे तेरा सत्यानाश जाए कमबख्त, इतना बड़ा धोखा,
नेट प्रैक्टिस मेरे साथ और मैच किसी और के साथ।
टेलीविजन पर आपने समाचार सुने होंगे जिसमें समाचार के अंत में मौसम का हाल भी सुनाया जाता है। अब जरा सोचिए कि यदि टेलीविजन पर फिल्मी खबरें सुनाई जाएं और अंत में फिल्मी दुनिया के मौसम का हाल सुनाया जाए तो ये किस तरह होगा?
ये रेडियो फिल्मिस्तान है, अब आप ओपी द्विवेदी से फिल्मी दुनिया की सड़ी गली बाजी खूजी खबरें सुनेंगे। बताया जाता है कि कल रात जूही चौपाटी पे प्रसिद्ध फिल्मी कलाकार के हंगल पद्मिनी कोल्हापुरी को गाने गा के छड़ते हुए पाए गए। पद्मिनी कोल्हापुरी ने कोल्हापुरी चप्पलों से उनकी पिटाई की, चप्पलें टूट गई लेकिन एक हंगल का सर सलामत है। फिल्म इंडस्ट्री के सभी खलनायकों ने भूख हड़ताल कर दी है। उनके नेता प्रेम चोपड़ा का कहना है कि हम लोग हमेशा हीरो से पिटते रहते हैं, कुछ फिल्मों में हमें हीरो को भी पीटने का मौका मिलना चाहिए। उनकी सारी मांगें मंजूर कर ली गई और उनसे कहा गया है कि उन्हें फिल्मों में तो हीरो से पिटना पड़ेगा लेकिन शूटिंग के बाद वे हीरो के घर पे जाकर उसकी जूती चप्पलों से मरम्मत कर सकते हैं। अभी हाल ही में सरकार ने एक सस्पेंस वाली आर्ट फिल्म को पुरस्कार दिया। इस सस्पेंस फिल्म रामलाल की कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि इस पूरी फिल्म में रामलाल नाम का कोई आदमी नहीं है। इस फिल्म का संगीत की खासियत यह है कि जब इस फिल्म का एलपी रिकॉर्ड बजाया जाता है तो पूरे मुंबई शहर के गधे और कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। अब आप फिल्मी दुनिया का मौसम का हाल सुनिए। एक 16 साल की नई हीरोइन के आ जाने से पुरानी हीरोइनों के सर पे घने बादल छा गए। हीरो अभिनेताओं के सर पे आसमान साफ है और खलनायकों की दुनिया में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अब आप चार बड़े अभिनेताओं का तापमान सुनिए। राजकुमार थर्मामीटर का पारा कांच फोड़ के बाहर निकल आया। धर्मेंद्र 50 डिग्री सेल्सियस, दिलीप कुमार 0 डिग्री सेल्सियस और देवानंद -4 डिग्री सेल्सियस।
हंसी का खजाना, ठहाकों का संसार आपके लिए सजाया है ओपी द्विवेदी ने। हंसिए, कहकहे लगाइए, कॉमेडी की दुनिया में आइए ओपी द्विवेदी के साथ, ओपी द्विवेदी के संग। जीवन के नए नए रंग और आए मजा ओपी द्विवेदी के संग। मनोरंजन की यह सजीली दुनिया आपके लिए सजाई है ओपी द्विवेदी ने।
मैं जिस शहर में रहता हूँ वो हादसों का शहर है और इस शहर का नाम है भोपाल। जी हाँ, भोपाल। और मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ उस कॉलोनी में भी किस्म किस्म के रंग बिरंगे लोग रहते हैं। इस कॉलोनी का नाम है अरेरा कॉलोनी। इसी कॉलोनी में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। उन्हें बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वो बहुत अच्छी गजलें गाते हैं। उन्होंने अपना नाम भी संगीत प्रसाद गीतकार रख रखा है। जब वो सुर लगाते हैं तो पूरे मोहल्ले के गधे और कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। एक बार मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे एक काम करने वाले की ज़रूरत है, कोई आदमी तुम्हारी नज़र में हो तो मुझे बताना। तो उन्होंने मुझसे पता नहीं किस जन्म का बदला ले लिया, बहुत ही अजीब किस्म का इंसान मेरे घर भेज दिया। हुआ यूं कि मैं अरेरा कॉलोनी स्थित अपने मकान के सामने खड़ा था तो क्या देखता हूं कि एक विचित्र आदमी मेरे घर की तरफ चला आ रहा है। उसने कुर्ता पजामा पहन रखा था और पूरे कपड़ों पे गिटार सितार तबले हारमोनियम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए थे। उसने मेरे पास आकर जेब से पते की पर्ची निकाली और बोला,
ये E4189 यही है?
मैंने कहा जी हाँ, ये E4 सेक्टर है और इस मकान का नंबर 189 ही है।
ये हंसी मजाक और लतीफों की कैसेट तुम्हारी निकलती है?
मैंने कहा जी हाँ, लतीफों की कैसेट मेरी ही निकलती है।
तो तुम ही हो गोपी त्रिवेदी?
मैंने कहा भाई मेरा नाम गोपी त्रिवेदी नहीं है, ओपी द्विवेदी है। तो वो कहने लगा,
अरे यार तुम तो बहुत ही उस्ताद आदमी हो, तुमने अपना नाम तक बदल लिया। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया मेरे को संगीत प्रसाद गीतकार जी ने। जिस आदमी ने अपना नाम तक बदल लिया उस आदमी के यहाँ काम करेंगे तो पता नहीं क्या हाल होगा।
मैंने कहा तुम्हें संगीत प्रसाद गीतकार जी ने भेजा है?
और नहीं तो क्या, उन्हीं ने तो भेजा है, पहले मैं उन्हीं के यहाँ काम करता था।
मैंने कहा उनके यहाँ तुम क्या काम करते थे?
वो रिहर्सल करते थे तो मैं सुर वगैरह लगाता था तबले पेटी पे और उनकी हारमोनियम वगैरह उठा के रखता था और काली एक काली दो से सुर मिलाता था।
मैंने कहा अच्छा, तो रिहर्सल कहाँ होती थी?
उन्हीं के घर पे होती थी।
मैंने कहा क्या आजकल रिहर्सल चालू है?
नहीं, अब बंद हो गई।
रिहर्सल बंद हो गई क्यों?
अरे यार क्या बताएं, मोहल्ले वालों ने उनको मारने की धमकी दी थी।
मैंने उससे पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला,
अरे नाम में क्या रखा है गुरु, कान से मतलब रखो। वैसे भी अगर तुम हमारा नाम सुनोगा और चमक जाओगे।
मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। मैंने कहा नहीं भाई, फिर भी तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोला
हमारा नाम है अनूप जलोटा।
मैंने कहा अनूप जलोटा?
जी हाँ अनूप जलोटा, चमक गए गुरु, मैंने कहा था ना चमक जाओगे।
मैंने कहा तुम लगते तो नहीं हो।
यही तो कमाल की बात है कि हम ही है मगर हम लगते नहीं है।
मैंने कहा वही अनूप जलोटा जो टीवी पे आते हैं?
हाँ वही है हम जो टीवी पे आते हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वही है हम अनूप जलोटा।
मैंने कहा भाई आपका नाम अनूप जलोटा है तो आपके पिताश्री का नाम जरूर पुरुषोत्तम दास जलोटा होगा।
यही तो कमाल की बात है कि हमारा नाम अनूप जलोटा है लेकिन हमारे पिताजी का नाम पुरुषोत्तम दास जलोटा नहीं है।
मैंने कहा फिर क्या है?
बोले हमारे पिताजी का नाम है जगजीत सिंह।
मैंने कहा तुम्हारा नाम अनूप जलोटा, बाप का नाम जगजीत सिंह, तुम्हारी अम्मा का नाम जरूर चित्रा सिंह होगा।
अरे यार तुम तो बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हो। मेरे पिताजी का नाम जगजीत सिंह है मगर मेरी अम्मा का नाम चित्रा सिंह थोड़ी है।
मैंने कहा फिर क्या है? बोला
मेरी माँ का नाम है बेगम अख्तर।
मैंने कहा घर में और कौन कौन है?
मेरी एक छोटी बहन है बहुत अच्छी है बहुत स्मार्ट है, उसका नाम पीनाज मसानी।
मैंने कहा ये पंकज उधास तलत अजीज वगैरह?
बोले ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, दिया और माई रिलेटिव।
मैंने कहा आओ भाग्य मेरे, जो आप जैसे खानदानी गायक के दर्शन हुए, आपका नाम अनूप जलोटा, बाप का नाम जगजीत सिंह, अम्मा का नाम बेगम अख्तर, क्या तुम्हारे यहाँ सब ऐसे ही नाम रखे जाते हैं? बोला
जी हाँ हमारे यहाँ सब ऐसे ही नाम रखे जाते हैं, आप आओगे ना तो हम आपका भी नाम रख देंगे, आपका रखेंगे बड़े गुलाम अली खान।
मैंने कहा भाई मुझे अपना नाम नहीं रखवाना है। मैं समझ गया कि बहुत ऊंची रकम है, मैंने सोचा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। मैंने कहा सुनो एक काम करो, जरा पोस्ट ऑफिस तक चले जाओ और एक पोस्ट कार्ड ला दो, मुझे चिट्ठी लिखनी है। तो वो बोला
पैसे दे दो।
मैंने कहा भाई पैसे काय के?
बोले पोस्ट कार्ड के और काय के।
मैंने कहा पैसे की क्या जरूरत है, फ्री में ले आओ।
अरे यार पढ़े लिखे हो के ऐसी टुच्ची हरकत करवा रहे हो यार, कहते हो पोस्ट कार्ड फ्री में ला, चोरी करवा रहे हो। आज कहोगे चोरी करो, कल कहोगे डांका डालो, फिर पैसों कहोगे कुएं में कूद पालो, ऐसा थोड़ी होता है।
मैंने कहा भाई मैं तुम्हारी स्मार्टनेस देखना चाहता हूँ। तो कहने लगा
अरे यार तुम क्या स्मार्टनेस देखोगे, अपना थोबड़ा देखो, तुमसे तो वैसे ही स्मार्ट है।
मैंने कहा भाई मैं तुम्हारी अकलमंदी देखना चाहता हूँ, पैसे देकर तो कोई भी ले आएगा, फ्री में लाओ तब जानू कि अपने बाप की असली औलाद हो। जब मैंने उसके बाप का हवाला दिया तो वो नाराज होकर बोला
अब तुम मेरे बाप तक पहुँच गए उस्ताद, अब मैं तुमको बता देता हूँ अपनी स्मार्टनेस, अब मैं तुमको फ्री में ही पोस्ट कार्ड ला के दिखाऊंगा।
पैसे तो उसके पास थे नहीं, कहीं से कचड़े से गुदा हुआ फटा पुराना पोस्ट कार्ड ढूंढ लाया।
लो बाबू ये पोस्ट कार्ड ले आया, जरा फोटी से चिट्ठी लिख दो तो पोस्ट कर दो।
मैंने उस गुदे गुदाए पोस्ट कार्ड को घुमा फिरा के देखा, मैंने कहा भाई ये गुदे गुदाए पोस्ट कार्ड पे क्या लिखेंगे, कोरा होता तो कुछ लिखते। तो वो मक्कारी से बोला
अरे बाबूजी कोरे पोस्ट कार्ड पे तो कोई भी लिख देगा, गुदे गुदाए पे लिखो जब जाने अपने बाप की असली औलाद हो।
मैं एक बार बॉम्बे एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था तो मिमिक्री आर्टिस्ट होने के कारण मेरी आदत थी कि मैं आसपास के लोगों को बड़ी बारीकी से देखता हूं। मैंने देखा वहां पर एक वजन तौलने की मशीन लगी हुई थी कंप्यूटराइज, एक साहब आए और उस मशीन पर खड़े हो गए, उन्होंने मशीन के अंदर सिक्का डाला, टिकट बाहर आई तो उनको बड़ा ताजुब हुआ क्योंकि उस टिकट पर बजाय किसी फिल्म स्टार का फोटो होने के उनका खुद का फोटो छपा हुआ था और नीचे लिखा था आपका नाम मूरखचंद है, आपको दुबई जाना है, दुबई की फ्लाइट 1 बजे जाती है। उन्होंने मशीन में फिर सिक्का डाला, फिर टिकट बाहर आई, उस पर लिखा हुआ था आपका नाम मूरखचंद है, आपके 3 बच्चे हैं, तीनों ढोर हैं, एक ही क्लास में 3 साल से फेल हो रहे हैं, आपको दुबई जाना है, दुबई की फ्लाइट 1 बजे जाती है। उन्हें बड़ा मजा आया, उन्होंने सोचा ऐसे तो पूरी हिस्ट्री पता लगाई जा सकती है। उन्होंने फिर से एक सिक्का डाला, टिकट बाहर आई, टिकट पर लिखा हुआ था आपका नाम मूरखचंद है, यहां आप वजन तौल रहे हैं और वहां भोपाल में आपकी बीवी पड़ोसी के साथ भाग गई है, दुबई की फ्लाइट 1 बजे जाती है। उन्होंने फिर सिक्का डाला, फिर टिकट बाहर आई, लेकिन उनकी
टिकट पर आपकी बार लिखा हुआ था, आपका नाम मूरखचंद है। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप बहुत समझदार हैं, वास्तव में आप बहुत बड़े वाले हैं, क्योंकि दुबई की फ्लाइट 1 बजे जा चुकी है।
आपने शिकार के तरह तरह के किस्से सुने होंगे, लेकिन जो किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा वो बहुत ही मजेदार है। इस पूरे किस्से में जबरदस्त सस्पेंस है और क्लाइमेक्स जो है किस्से का वो बहुत ही जोरदार है। हुए यूं कि दो बेवकूफ किस्म के लोग बैठे हुए थे और एक लंबी लंबी फेंक रहा था, दूसरा झेल रहा था।
हमारे दद्दा गजब के शिकारी हैं।
अच्छा,
लड़ाइया लड़ाइया थोड़ी मारते थे, बाघ लाइन लाइनस टाइगर टाइगरस ऐसे जानवर मारते थे, ना दिन देखे ना रात, उठाई दुनाली बंदूक को निकल पड़े।
अच्छा,
एक बार चले जा रहा है तो चलते चलते एक खतरनाक मोड़ आया।
फिर ले फिर क्या हुआ?
ले फिर क्या हुआ, मुड़ गए। इसके बाद चलते चलते एक नल्ला पड़ा और नल्ले के उस तरफ देखा तो शेर।
अच्छा, शेर?
हाँ, शेर टाइगर।
फिर क्या हुआ?
फिर नल्ले के जाबाजू दद्दा और बाबाजू शेर।
फिर
शेर घूरा दद्दा को और दद्दा घूरे शेर को।
फिर
दद्दा घूरे शेर को और शेर घूरे दद्दा को।
फिर
घूरे दद्दा शेर को और शेर घूरे दद्दा को।
फिर आगे क्या हुआ?
फिर शेर घूरे दद्दा को और दद्दा घूरे शेर को।
अरे आगे क्या हुआ?
अरे अभी तो घूरा ही रहे हैं।
अबे अब घूर चुके बे, आगे बता।
फिर एक पांव आगे बढ़ाया।
कौन ने? दद्दा ने?
नहीं, शेर ने।
फिर क्या हुआ?
फिर दूसरी टांग आगे बढ़ाई।
कौन ने? शेर ने?
नहीं, दद्दा ने।
फिर
दोनों कंधे आगे करके घुटने के बल नीचे बैठ गया।
कौन? दद्दा?
नहीं, शेर।
फिर
दोनों आंखें एकदम लाल।
कौन की? शेर की?
नहीं, दद्दा की।
फिर
घूर के देखा।
कौन ने? दद्दा ने?
नहीं, शेर ने।
और क्या हुआ?
फिर उठाई दुनाली बंदूक और लगाया निशाना।
कौन ने? शेर ने?
नहीं, दद्दा ने।
फिर
हाथ रखा बंदूक के ट्रिगर पे।
कौन ने? शेर ने?
नहीं, दद्दा ने।
फिर
स्थिति ऐसी कि अब फायर हो तब फायर।
फिर क्या हुआ?
फिर गजब की चुस्ती फुर्ती।
कौन में? शेर में?
नहीं, दद्दा में।
फिर क्या हुआ?
फिर लगाई छलांग।
कौन ने? दद्दा ने?
नहीं, शेर ने।
फिर क्या हुआ?
फिर क्या होना था, कोई नकली शेर थोड़ी था रबड़ का, असली शेर था, फाड़ कर रख दिया दद्दा को।
सब एक बार 60 साला ने बड़ी भी बड़ी मूड में थी, अचानक गाना गाने लगी, मुंह में फर्नीचर नहीं लेकिन गाना गाने का शौक था, गाना गाने लगी सुर में।
आए आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बाप बन जाए।
बगल में उनके 80 साला ना बड़े मियां बैठे हुए थे, बिल्कुल खांसते तो ऐसा लगता है जैसे ट्रैक्टर का डीजल इंजन स्टार्ट हुआ हो। साहब वो भी मूड में आ गए, खांसते खखारते गाने लगे।
100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। पानी पानी बेगम पानी।
सब दम फूल आया, एकदम जमीन पे लेट गए, पानी मांगने लगी तो बड़ी भी गुस्से से चिल्ला के बोली,
आज जवानी भर तो तुमने कुछ नहीं किया, खालिस पानी पी पी के जवानी गुजार दी, और अब जब बुढ़ापे में पैर कब्र में लटके तो तुम्हें आशिकी सूझ रही है, गाना गा रहे हो।
तो बड़े मियाँ बोले, बेगम तो तुम भी तो गाना गा रही थी।
आई मैं तो धार्मिक फिल्म संतोषी माता का गाना गा रही थी।
बोले ये आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, ये धार्मिक फिल्म संतोषी माता का गाना है।
और नहीं तो क्या?
बेगम बताना जरा, संतोषी माता में ये गाना कब होता है?
आई इंटरवल में नहीं होता है, इंटरवल में।
टीवी पर एक सीरियल आता था विक्रम और बेताल,
यदि विक्रम और बेताल दोनों ही सिंधी हो तो क्या होगा? सबसे पहले तो बेताल जिस झाड़ पर उल्टा लटका होगा उसी के फल तोड़ तोड़ के पब्लिक को बेचना शुरू कर देगा और हाथ में तराजू और बाट लिए होगा, यानी वहीं पे धंधा शुरू। फिर विक्रम बेताल को अपने कंधे पे लाद कर चलने लगेगा तो बेताल कहेगा,
करे साईं, घरों टेम होगी और साईं विक्रम, तू मेरे को रोज अपने कंधे पे लाद के ले जाता है न, तेरे को वजन नहीं लगता? तो राजा विक्रम कहेगा,
बड़ी बेताल, जब मैं तेरे को अपने कंधे पे टांग के ले जाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी दुकान का चावल का बोरा लाद के ले जा रहा हूँ।
साईं विक्रम, मैं तेरे को रोज एक स्टोरी सुनाता हूँ, तू रेज मेरी स्टोरी सुन के बोर नहीं होता?
वड़ी बेताल, जब पब्लिक अपने को टीवी पे देख के बोर नहीं होती तो वड़ी मैं तेरा स्टोरी सुन के कैसे बोर हो सकता हूँ? फिर ये तो मेरा धंधा है, मेरे को इसके लिए पैसा मिलता है।
एक बार स्टेडियम के किनारे बहने वाले एक गंदे नाले के कीड़े मकोड़ों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी फुटबॉल मैच खेलें। तो साहब मैच शुरू हो गया, रेंगने वाले और उड़ने वाले कीड़ों के बीच फुटबॉल मैच शुरू हो गया और जो उड़ने वाले कीड़े थे उनकी टीम के कैप्टन थे मच्छर और सेंटर फॉरवर्ड खेल रही थी मक्खी, और जो रेंगने वाले कीड़े थे उनके सेंटर फॉरवर्ड खेल रहे थे कैचुए और कैप्टन थे बिच्छू जी। तो जो उड़ने वाले कीड़े थे वो हवा में बॉल को लहराते हुए ले जाते और भाड़ से देते गोल। सब 20 गोल हो गए, रेंगने वाले कीड़े बड़े नर्वस हो गए, परेशान हो गए। जो सेंटर फॉरवर्ड कैचुए जीते उन्होंने बिच्छू से कहा,
ये ऐसे तो अपना कबाड़ा हो जाएगा यार उस्ताद कैप्टन साहब, ये तो एकदम गोल पे गोल मार रहा है, अपनी तो खटिया खड़ी हो जाएगी।
बिच्छू बोला, भाई तुम परेशान मत हो, अभी अपने एक जबरदस्त खिलाड़ी मैदान में आने वाले हैं, वो जब आएंगे तो ये सारे गोल उतार देंगे और गोल इन पे चढ़ा देंगे उड़ने वाले कीड़ों पे और अपनी जीत होगी, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन साहब उड़ने वाले जो कीड़े थे उन्होंने फिर हवा में बॉल ले जाते हुए फिर गोल मार के और 10 गोल इन पे चढ़ा दिए। अब साहब काफी परेशान हो गए रेंगने वाले कीड़े और हाफ टाइम हो गया और कैचुए ने बार बार अपने कैप्टन से पूछा,
यार वो खिलाड़ी कब आ गए यार, तुम बोल रहे जबरदस्त खिलाड़ी आने वाले यार, उसको उतारो यार, ऐसे तो अपन परेशान हो जाएंगे, हार जाएंगे यार, आप समझ नहीं रहे हो।
बिचोला, तुम चिंता मत करो, वो खिलाड़ी आने वाला है।
भाई कब आएगा?
हाफ टाइम के बाद वो खिलाड़ी मैदान में उतरा। ये खिलाड़ी था कन खजूरा। जी हाँ, वही कन खजूरा जिसके 100-150 पैर होते हैं। तो साहब ये खिलाड़ी जब मैदान में उतरा तो इसने कमाल कर दिया, अपने ढेर सारे पैरों के बीच में गेंद फंसाता हुआ ले जाता और भाड़ से देता गोल। तो उड़ने वाले जो कीड़े थे उन पर उन्होंने जितने गोल चढ़ाए थे वो गोल तो उतार ही दिए और उसके अलावा 50 गोल चढ़ा दिए। इस तरह रेंगने वाले कीड़ों की जीत हुई, रेंगने वाले कीड़े जीत गए। जब पार्टी शाम को हुई कॉकटेल पार्टी तो कैचुए ने बिच्छू जी से पूछा,
यार एक बात समझ में नहीं आई कैप्टन साहब।
बिच्छू बोला, कहो।
यार ये जो कनखजूरा जी हैं इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे खेले, मारे एक चीज मेरी समझ में नहीं आई कि इतने अच्छे खिलाड़ी को आपने हाफ टाइम के बाद क्यों उतारा? भाई हाफ टाइम के पहले आपको उतारना चाहिए था इस खिलाड़ी को।
बिच्छू बोला, तुम बेवकूफ हो, वो तैयार हो रहे थे, उनको तैयार होने में टाइम लग गया, आने वाले वो हाफ टाइम के पहले ही थे लेकिन तैयारी में टाइम लग गया इसलिए हाफ टाइम के बाद उतरे।
बोले तैयारी में कैसे टाइम लग गया?
तो बिच्छू बोला, भाई उनके 150 पैर हैं, जूते पहनने में टाइम लग गया।
हंसिए, ठहाके लगाइए, कहकहों की दुनिया में आइए, ओपी द्विवेदी के साथ, ओपी द्विवेदी के संग। जीवन के कई रंगों को आपके लिए समेट लाए हैं ओपी द्विवेदी अपने मिमिक्री आइटम्स में। यूं तो बस में सफर आपने कई बार किए होंगे लेकिन जो मजा ओपी द्विवेदी के साथ आएगा वो सबसे अलग है।
हाय राम, कितने चिल्ला लेके आई रे, ये देख तो कितने गंदे बच्चे, ये देख देख तेरे दुपट्टे से नाक पोंछ रहा है रे। दुनिया तीन के जमाने में भी गांव वाले कितने चिल्ला पैदा कर लेते हैं ना। काय भाई, तुमने अब दुनियादारी नहीं देखी, लगा था तुम्हारा रुपया नहीं टूटो अब, केला रहू है जब पता लगे तुम्हें।
जरा सोचिए, यदि रेलवे अनाउंसर क्रिकेट कमेंट्री करे तो क्या आलम होगा?
योर अटेंशन प्लीज, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होने वाला क्रिकेट मैच अपने निर्धारित समय से एक घंटे विलंब से प्रारंभ होगा। ये मैच 3:56 पर प्रारंभ होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गवास्कर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कपिल देव और रवि शास्त्री आउटर पर खड़े। कपिल देव ने सुपरफास्ट एक्सप्रेस की स्पीड से गेंद को फेंका और प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया। इमरान खान आउट हो चुके हैं और यार्ड की तरफ जा रहे हैं। दर्शकों से अनुरोध है, उन्हें यार्ड में जाने के लिए रास्ता दें। धन्यवाद।
फिल्मी सितारों से मिलने को किसका जी नहीं चाहेगा? आप भी चाहेंगे कि आपकी फिल्मी सितारों से मुलाकात हो, लेकिन क्या आप एक साथ एक ही बार में ढेर सारे फिल्मी सितारों से मिल सकते हैं? जी हाँ, तभी मिल सकते हैं जब आपके साथ हों ओपी द्विवेदी, जो अपने अंदाज में कहेंगे,
मेरा नाम खान है, अमजद खान। और जब खान किसी के पीछे पड़ जाता है ना, तो बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छोड़ता है। हम जानते हैं कि शहर में जितने भी लोफर हैं, वो सब हमारे दोस्त हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जितने भी शहजादे सलीम हैं, वो सब अनारकली पर लाइन मार रहे हैं। तुमने सुना मैंने क्या कहा?
अरे हाँ, क्या केले हो? मैं तो कह रही हूँ पान खा लो। ये लो भैया, बहुत मजे का पान है कि जाने कहाँ से आ जाती है।
इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ है ओपी द्विवेदी के पास, लेकिन पूरा पूरा मजा तो तभी आएगा जब हम होंगे, आप होंगे और होंगे ओपी द्विवेदी। इन सब के साथ ही फिल्मी गीतों की दमकती महकती शानदार शाम भी। मनोरंजन की दुनिया में आइए ओपी द्विवेदी के साथ, ओपी द्विवेदी के संग।
एक थे नब्बू मियां, उन्होंने एक गधे का बच्चा पाला था। इस गधे से उन्हें बड़ी मोहब्बत थी। लोग कुत्ते के पिल्ले को गोद में लेकर घूमते हैं और नब्बू मियां अपने गधे के पिल्ले को गोद में लेकर घूमते थे। जहां वो जाते वहीं गधे को घुमाने ले जाते, जो कुछ वो खाते वही गधे को खिलाते। एक बार गधे की तबीयत बहुत खराब हो गई, ढोर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने 4 गोलियां दी और खिलाने का तरीका भी बता दिया कि आप गधे का मुंह फाड़ें, फिर उसके मुंह में एक पुंगी रख के ये 4 गोलियां डाल के उस पुंगी में जोर से फूंक दें। कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब ने देखा कि नब्बू मियां का नौकर नब्बू मियां को लिए चला आ रहा है। नब्बू मियां गधे की तरह हरकत कर रहे थे और उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी और रस्सी नौकर के हाथ में थी। डॉक्टर साहब बोले, ये क्या तमाशा है? तो नब्बू मियां का नौकर बोला,
अरे आप क्या बताएं, वो आपने गधे के मुंह में पुंगी लगा के गोली डाल के फूंकने को कहा था ना, तो नब्बू मियां ने वैसे ही किया, मगर इससे पहले के नवाब साहब फूंकते गधे ने फूंक दिया।
(laughs)